भवान् विस्मस्य कर्णश्च भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपश्च समितिञ्जय अस्वस्थामाभिकर्णस्य सौमदस्तिस्तथैव च
किताब जमीन में नहीं रखना है ना। दूसरी बात, अपनी किताब को मतलब गोदी में रखने से भी ज्यादा अच्छा है कि इतनी टेबल हो, क्योंकि हमारे मित्र में है टेबल, और वो टेबल जो है आप 10-12 कम से कम ले लीजिए तो वो एक दूसरे के ऊपर बैठ जाएंगे, है ना। तो वो जो है टेबल बहुत अच्छा रहेगा, वो टेबल जो है आगे कल से या टेबल वो टेबल जो है आप लोग यूज करिए उसको। संकास में लिखी बोली भगवान
आप
भीष्म
पितामह
कर्ण
कर्ण
कृपाचार्य सदा संग्राम
सदा संग्राम
मेरी सेना में
स्वयं
आप
भीष्म
कृपाचार्य का पुत्र भोरी समा आदि है जो युद्ध में
सदैव
विजयी रहे हैं। तो तात्पर्य दुर्योधन युद्ध वीरों का उल्लेख करता है तो सदैव विजयी होते रहे। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, और सौमदत्त या भूरिश्रवा भारियों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडव के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की गुणवा बहन द्रोणाचार्य को प्यारी थी। यहाँ प्रभुपाद ने इनका जो है विवरण दिया है, तो आप गिन सकते हैं कितने वीरों के नाम लिए दुर्योधन ने। ये अपनी सेना के हैं, इन कौरव सेना के हैं। सबसे पहला कौन है? हाँ नहीं, सबसे पहले भगवान यानी आप, आपका मतलब द्रोणाचार्य है ना, पहले द्रोणाचार्य, दूसरे भीष्म, तीसरे कर्ण, चौथे कृपाचार्य, पांचवें अश्वत्थामा, छठवें विकर्ण, सातवें सौमदत्त। सौमदत्त का मतलब सौमदत्त के पुत्र यानी भूरिश्रवा है ना। तो ये सात जो है वीरों के नाम दिए हैं, तो इसमें प्रभुपाद सबसे पहले किसका वर्णन कर रहे हैं? विकर्ण का। विकर्ण इस श्लोक में कितने संख्या में है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठवीं संख्या इस श्लोक में जो दुर्योधन छठवीं संख्या में जिनको नाम दिया है उनका जो है प्रभुपाद सबसे पहले वर्णन कर रहे हैं। क्या विकर्ण दुर्योधन का भाई है? कितने भाई हैं दुर्योधन?
100
भाई हैं। दुर्योधन 100 भाई हैं, उनमें से एक विकर्ण है ना। तो विकर्ण के विषय में इसी भगवान ने कहा पुस्तक में जो है काफी विवरण दिया गया है तो विकर्ण के बारे में इसमें क्रम से सबका दिया गया है। इतना समय नहीं हमारे पास कि सबका इसमें से पढ़ के सुनाओ में काफी एक एक का क्रम से काफी विवरण दिया गया है। तो विकर्ण के बारे में इसमें लिखा है कि दुर्योधन ने अश्वत्थामा का नाम लेने के बाद विकर्ण का नाम लिया है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में विकर्ण भी एक थे अर्थात दुर्योधन के छोटे भाई थे। दुर्योधन सबसे बड़ा है ना, जिस समय दुशासन भरी सभा में द्रौपदी का अपमान कर रहा था उसमें विकर्ण ने इस अधर्म का तीव्र विरोध किया था। सौ धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में एक है विकर्ण जो कि धार्मिक उन्हें तीव्र विरोध किया था सभा में, तीव्र विरोध किया था परंतु कर्ण ने विकर्ण को छोटी अवस्था का समझकर डांट कर चुप करा दिया। डांट कर चुप करा दिया कि तुम ज्यादा समझदार बनते हो, यहाँ तो भीष्म में है द्रोण है वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, तुम कहाँ से इतने बड़े धर्म के ज्ञाता हो गए कि तुम बोल रहे हो, तो डांट करके चुप करा दिया। कर्ण बहुत दुष्ट है, कर्ण जितना दुष्ट है विकर्ण उतने ही धार्मिक है ना, कर्ण बहुत अधर्मी है। यद्यपि विकर्ण अत्यंत धर्मात्मा थे परंतु दुर्योधन के धर्म में सहयोग देने के कारण उन्हें भी धर्म का फल भोगना पड़ा। देखो ऐसा होता है, अगर संग करते हैं किसी व्यक्ति का तो उसका जो पाप और पुण्य का हिस्सा अपने को लेना पड़ता है। तो विकर्ण हालांकि बहुत धार्मिक थे लेकिन फिर भी उनके साथ रहे है ना, अधर्म का फल भोगना पड़ा। विकर्ण का नाम विशेष रूप से लेने के कारण ये पता चलता है कि दुर्योधन को दुशासन की अपेक्षा विकर्ण के बल पर अधिक गौरव था। यद्यपि दुर्योधन को दुशासन अधर्म में अधिक सहयोग देता था पर युद्ध में उसे विकर्ण से सहयोग के अधिक आता था। दुशासन का नाम ले लिया जबकि दुर्योधन का अधर्म में साथ देने वाला सबसे ज्यादा कौन था, दुशासन है। दुर्योधन की आज्ञा से दुशासन नहीं तो द्रौपदी के वस्त्र खींचे थे है ना, अधर्म है लेकिन युद्ध में दुशासन इतना वीर नहीं है जितने विकर्ण वीर हैं। इसी दुर्योधन ने विकर्ण का नाम दिया है, दुशासन का नाम नहीं दिया है ना। तो फिर आगे क्रमपा लिखते हैं अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है। तो अश्वत्थामा के बारे में इसमें लिखा है, पांचवें नंबर में है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के बारे में कुछ बातें लिखी हैं। कृपाचार्य के नाम के बाद दुर्योधन ने अश्वत्थामा का नाम लिया है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र तथा दुर्योधन का सखा था। दुर्योधन जानता था कि कृपाचार्य के समान अश्वत्थामा भी अवध्य है। अश्वत्थामा भी क्या है, अवध्य है, मतलब नहीं मारा जाएगा, इस युद्ध में नहीं मारा जाएगा। कृपाचार्य अश्वत्थामा ये दो लोग अगले मनमंत्र में सप्तऋषियों में से मतलब एक बनेंगे, अश्वत्थामा और कृपाचार्य। तो ये जो मनमंत्र है तो ये मनमंत्र 30 करोड़ साल का है, प्रत्येक मनमंत्र 30 करोड़ साल का होता है, ये सातवां मनमंत्र चलता है। 30 करोड़ साल में से 12 करोड़ साल अभी जीते हैं इस मनवंतर के, तो 18 करोड़ साल इस मनवंतर के हैं और फिर अगले मनवंतर के 30 करोड़ साल कितना हो गया, 48 करोड़ साल। अश्वत्थामा की आयु 48 करोड़ साल की है। युद्ध में जो है अश्वत्थामा नहीं मारा जाएगा है ना, और अश्वत्थामा कृपाचार्य भी इसी प्रकार से है ना। तो कृपाचार्य के समान अश्वत्थामा भी अवध है, हमें समझना चाहिए कि श्रीमद् भागवत के अनुसार अश्वत्थामा भी अगले मनमंत्र के सप्तऋषियों में से एक बनेंगे। अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण की महिमा ना जानने के कारण तथा बालक होने के कारण युद्ध में श्री कृष्ण तथा अर्जुन को आग्नेयास्त्र के द्वारा मार डालने का भी प्रयास किया था। उस समय व्यास जी ने अश्वत्थामा को श्री कृष्ण की महिमा बताई। महाभारत युद्ध के पश्चात रात्रि में जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी और अर्जुन कृष्ण ने उसका पीछा किया तो अपने प्राण रक्षा के लिए उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जब अर्जुन ने उसके ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो उसे अपना ब्रह्मास्त्र लौटाना पड़ा, परंतु वो अपने ब्रह्मास्त्र को पूरी तरह लौटा नहीं सकता था, अतः उसके ब्रह्मास्त्र से उत्तरंग ग्रहण में महाराज परीक्षित की मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण उत्तराय जन्म में महाराज परीक्षित को तो जीवित कर दिया, परंतु अश्वत्थामा को बताया कि बाल हत्या के पाप के कारण अगले 5000 वर्ष तक उसके सिर से खून निरंतर बहता रहेगा, जिसकी दुर्गंध के कारण वो एक स्थान में खड़ा भी नहीं रह सकेगा। गर्भ हत्या का कितना खराब परिणाम है ना, भगवान ने तो रक्षा कर दी परिस्थिति महाराज की, लेकिन गर्भ हत्या की का जो पाप है वो तुमको भोगना पड़ेगा, तुमने तो हत्या कर ही दी थी है ना, तो क्या 5000 साल तक क्या होगा, फिर से खून बहता रहेगा, बंद नहीं होगा, उसकी दुर्गंध से तुम खड़े नहीं हो पाओगे, भागते रहोगे। दुर्योधन ने कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा के नामों के बीच में समय शब्द का प्रयोग करके ये संकेत किया है कि दोनों ही चरणजीवी हैं, अतः उसकी विजय नहीं सकते। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन ने समितिंजिया शब्द का प्रयोग किया, समितिंजिया समतल युद्ध में विजयी दो लोगों के लिए, कौन दो, अश्वत्थामा और कृपाचार्य, क्यों युद्ध में विजयी, उसने सोचा कि अगर मारे नहीं जाएंगे तो युद्ध में विजयी होंगी, फिर के बल पर मैं युद्ध में विजय प्राप्त कर लूंगा है ना, लेकिन होना क्या है कि वो तो नहीं मारे जाएंगे लेकिन तो भी विजय नहीं मिलेगी, दुर्योधन को विजय नहीं प्राप्त होगी। कौरव सेना में तीन लोग जीवित बचे थे, तीन लोग जीवित बचे थे, कौन कौन थे, अश्वत्थामा और हैं
विदुर,
अश्वत्थामा कृपाचार्य नहीं, विदुर ने तो युद्ध में भाग नहीं लिया था, अश्वत्थामा कृपाचार्य हैं नहीं, भीम को सबसे जल्दी पड़े, तीन लोग थे, सात लोग पांडवों के पक्ष में थे, 5 पांडव सातकी और कृष्ण, और इनके पक्ष में तीन लोग थे, अश्वत्थामा और कृपाचार्य और कृतवर्मा, कृतवर्मा कृतवर्मा जो कि यादव यादव सेना भी दुर्योधन को प्राप्त हुई थी, तो कृतवर्मा इनके पक्ष में, कौरवों के पक्ष में, अश्वत्थामा कृपाचार्य और कृतवर्मा तीन लोग जो है कौरव पक्ष के जीवित रहे। तो फिर कृपा शास्त्र में सोमदत्ती या भूरी सेवा के बारे में बताते हैं, तो इसमें भूरी सेवा का नाम 7वें नंबर में विकर्ण के बाद दुर्योधन ने अंत में भूरी सेवा का नाम दिया है। भूरी सेवा के पिता सोमदत्त तथा उनके पिता भालिक थे जो महाराज शांतनु के भाई थे। अब सोचिए कितना मतलब बड़ा कुटुंब है ये, शांतनु के भाई भाईलिक है ना, तो भाईलिक के पुत्र हैं, भाईलिक के पुत्र हैं सोमदत्त है ना, तो सोमदत्त जो है भाईलिक के पुत्र हैं, भालिक शांतनु के भाई हैं, तो सोमदत्त किसके मतलब पीढ़ी में हुए, भीष्मदेव की पीढ़ी में हुए ना, तो शांतनु के पुत्र भीष्म है और भाली के पुत्र सोमदत्त हैं, भाली शांतनु भाई बहन, तो भीष्मदेव की पीढ़ी के सोमदत्त हैं, तो सोमदत्त भी इस युद्ध में है और सोमदत्त के पुत्र भूरी सेवा भी इस युद्ध में है, तो भूरी सेवा किसकी पीढ़ी के हुए, नहीं अर्जुन की नहीं, अर्जुन के पिता जैसे सोमदत्त वह महाराज पांडु की पीढ़ी थी, पांडु धृतराष्ट्र, पांडु धृतराष्ट्र की पीढ़ी के हैं भूरी सेवा। सात्यकी के साथ युद्ध करते समय इन्होंने सात्यकी को मार डालने का प्रयास किया था, उस समय श्री कृष्ण के आदेश से अर्जुन ने दूर से ही भूरी सेवा की तलवार से ध्वजा काट दी तथा श्री कृष्ण के प्रिय भक्त सात्यकी के प्राणों की रक्षा हो गई। उस समय भूरी सेवा ने अर्जुन तथा श्री कृष्ण पर अधर्म के आचरण का आरोप लगाया, परंतु अर्जुन ने युद्ध के नियमों के अनुसार सिद्ध किया कि उन्होंने किसी प्रकार का अधर्म नहीं किया। भूरी सेवा अर्जुन की बात का कोई उत्तर नहीं दे सके तथा युद्ध भूमि में अपने प्राणों को त्यागने के लिए ध्यान लगाकर बैठ गए। उस समय श्री कृष्ण अर्जुन ने उनके जीवन पर्यंत यज्ञ तथा दान के आचरण की प्रशंसा की तथा उनके लिए श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति की कामना की। उसी समय सात्यकी ने युद्ध के नियम के अनुसार भूरी सेवा का मस्तक अपनी तलवार से काट दिया। तथा भोरी शर्मा को श्री कृष्ण अर्जुन के आशीर्वाद से उत्तम गति प्राप्त हुई। तो इसमें फिर दो बात तात्पर्य से कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वो कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कर्ण क्या है? अर्जुन का आधा भाई है ना। तो कर्ण के बारे में कर्ण भीष्म जी की बात दुर्योधन ने कर्ण का नाम दिया है। कर्ण दुर्योधन का अत्यंत घनिष्ठ मित्र था। कर्ण यद्यपि क्षत्रिय था, क्योंकि कुंती देवी ने सूर्य देव के द्वारा उसे जन्म दिया था, परंतु समाज की दृष्टि में वो कुंती का पुत्र ना होकर नीच जाति का सूत पुत्र माना जाता था। दुर्योधन ने कर्ण का सम्मान बढ़ाने के लिए उसे अंग देश का राजा बना दिया था। दुर्योधन के इस उपकार के कारण वो सदैव दुर्योधन का कृतज्ञ था, तथा दुर्योधन के प्रत्येक पाप कर्म में वो साथ देता था। यद्यपि कर्ण अत्यंत त्यागी तथा धार्मिक था, परंतु दुर्योधन जैसे साधु के संघ के कारण उसका भी चरित्र दूषित हो गया। शास्त्र में कहा गया है कि असाधु के संगति से सदैव दूर रहना चाहिए, परंतु अपने अज्ञान के कारण कर्ण दुर्योधन के साथ अपनी मित्रता के निर्वाह को ही अपना सर्वश्रेष्ठ धर्म समझता था। अज्ञान गीता में कहा गया है कि इस प्रकार के समस्त धर्म को त्याग कर श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए, अर्थात भक्तों का हर प्रकार से संग त्याग कर भक्तों का संग करना चाहिए, परंतु कर्ण अपने अज्ञान के कारण उस धर्म को ही अपना धर्म समझता था। श्री कृष्ण ने भी कर्ण को धर्म की शिक्षा देकर समझाया था कि वह पांडवों के पक्ष में युद्ध करे, परंतु मूर्ख होने के कारण उसने श्री कृष्ण की बात नहीं मानी तथा अपने जीवन को कर्ण से किया। कर्ण के पिता सूर्यदेव ने भी कर्ण को यही शिक्षा दी थी, तथा कुंती देवी ने भी कर्ण को समझाया था, परंतु कर्ण ने अधर्म को ही धर्म बताकर सभी की शिक्षाओं को ठुकरा दिया था। इस श्लोक में दुर्योधन ने जितने योद्धाओं का नाम लिया उनमें कर्ण ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो दुर्योधन को पांडवों के विरुद्ध अन्याय करने में सदा प्रोत्साहन देता रहता था। कर्ण के अतिरिक्त दुशासन और शकुनी भी दुर्योधन के साथी थे, परंतु इन दोनों की तुलना में कर्ण ही अधिक वीर था जो अर्जुन से सदा स्पर्धा रखता था। यद्यपि यहाँ पर दुर्योधन कर्ण का नाम ले रहा है, परंतु गीता के उद्देश्य के बाद युद्ध के प्रारंभ में भीष्म जी जब कर्ण की निंदा करते हैं तो कर्णयुद्ध छोड़कर अपने शिविर में ये कहकर चला जाता है कि यदि भीष्म इस सेना में युद्ध करेंगे तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। जब युद्ध में 10 दिनों के बाद भीष्म जी की सरसैया हुई तब कर्ण युद्ध में आया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि दुर्योधन कर्ण पर अत्यंत विश्वास करता था। कर्ण के बारे में आगे कृपाचार्य जुड़वा बहन कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को प्यारी थी। तो कृपाचार्य के बारे में लिखा है, सम्मान की दृष्टि से कृपाचार्य का नाम द्रोणाचार्य के बाद आना चाहिए था, परंतु दुर्योधन अभक्त होने के कारण कृपाचार्य का नाम कर्ण के बाद लिखा है। कृपाचार्य भी द्रोणाचार्य के समान श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। गीता के उपदेश के बाद युद्ध के प्रारंभ में जब युधिष्ठिर महाराज द्रोणाचार्य से मिलने के बाद कृपाचार्य को प्रणाम करके विजय का आशीर्वाद मांगते हैं तो कृपाचार्य उन्हें विजय का आशीर्वाद देते हैं तथा ये भी बताते हैं कि उनके युद्ध में वध नहीं होगा। किसने बताया? कृपाचार्य ने बताया। किसको बताया? युधिष्ठिर को। हाँ, युधिष्ठिर को बताया। क्या बताया? कृपाचार्य का मतलब मेरा युद्ध में वध नहीं होगा। श्रीमद् भागवत ने बताया क्या है कि कृपाचार्य अभी भी जीवित है, तथा सातवें मनमंत्र के बाद अगले आठवें मनमंत्र में कृपाचार्य भी सप्तऋषियों में से एक होंगे। हमें जानना चाहिए कि प्रत्येक मनमंत्र में सप्तऋषि बदलते हैं। एक मनमंत्र 71 युगों का अर्थात लगभग 30 करोड़ वर्षों का होता है। इस सातवें मनमंत्र में भी 43 युग शेष हैं अर्थात लगभग 18 करोड़ वर्ष बाकी हैं। इससे पता चलता है कि कृपाचार्य अभी 48 करोड़ वर्षों तक भविष्य में जीवित रहेंगे, जिसका अर्थ है युद्ध में विजयी। परंतु कृपाचार्य के विषय में दुर्योधन ने समय चिंतिया शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ युद्ध में विजयी, परंतु वास्तव में तो कृपाचार्य युद्ध में अवध है। दुर्योधन का विचार है कि चूंकि कृपाचार्य युद्ध में मारे नहीं जाएंगे इस युद्ध में उसे विजय अवश्य प्राप्त होगी, परंतु वास्तविकता यह है कि ना तो कृपाचार्य युद्ध में मारे ही जाएंगे और ना ही दुर्योधन को युद्ध में विजय ही प्राप्त होगी। तो इस तरह से कुछ हमने चर्चा की इस पुस्तक के द्वारा भी, और इसमें जो विशेष बात है वो ये है कि दुर्योधन कृष्ण को नहीं समझ रहा है, उसके पास इतनी आंखें नहीं है कि जो सबसे बड़ा जो नियंत्रण है हर चीज के ऊपर वो कृष्ण का है और वो कृष्ण मांडवों के पद में है। तो इसको कहते हैं भौतिक बुद्धि। भौतिकतावादी जो है अपनी बुद्धि के अनुसार निर्णय करता है, इसकी बुद्धि शुद्ध नहीं होती। इसलिए वो जो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है उसको वो नहीं समझता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन है? कृष्ण है। विजयस्तु पांडु पत्राणाम ये साम पक्षे जनार्दना। विजय तो किनकी होगी? पांडु पुत्रों की होगी, जिनके पक्ष में कौन है? जनार्दन है। दुर्योधन नहीं समझ सकता। दुर्योधन अपनी भौतिक बुद्धि के कारण जो है अनेक अनेक कारण देख रहा है कि उस युद्ध में विजय होगी, वो युद्ध में विजय होगा, है ना। जब कृष्ण उसको मिलने वाले थे, कृष्ण कहा था एक तरफ जो है मैं रहूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और एक तरफ मेरी 10 करोड़ शस्त्र सहित सेना होगी। तो दुर्योधन ने क्या माना था कि क्या क्या लेना चाहिए? सेना। हालांकि कृष्ण अर्जुन को पहले सुना दिया था, अगर तुम छोटे हो तो तुम मानो, तो अर्जुन ने कृष्ण को जी मान लिया, तो दुर्योधन बहुत खुश हो गया ये सोच करके। दुर्योधन भी मूर्ख है और कृष्ण भी मूर्ख है। फिर कृष्ण अर्जुन के मित्र हैं, तो कृष्ण भी मूर्ख है कि अपनी सेना नहीं दी अर्जुन को, अर्जुन भी मूर्ख है कि कृष्ण की सेना नहीं दी। दोनों के दोनों मूर्ख हूँ, मैं अकेला बुद्धिमान हूँ, मुझे कृष्ण की सेना मिल गई, है ना। तो ये जो है मतलब भौतिकतावादी की ऐसी बुद्धि होती है। इस तरह से हमने कुछ चर्चा की इस भगवद गीता के बारे में, लेकिन अब जो है ये जो समय चल रहा है, इसके बाद जब मैं आया था तो कार्तिक का महीना चल रहा था, है ना, और कार्तिक का महीना चला था 6 नवम्बर तक, 6 नवंबर तक, और अब 7 नवंबर से 6 दिसंबर तक कौन सा महीना चल रहा है? मार्गशीर्ष। तो ये महीना भी बहुत पवित्र है, कार्तिक के महीने की तरह ये महीना भी पवित्र है। गीता में भगवान क्या कहते हैं? माता नाम मार्गशीर्ष हूँ, महीनों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूँ, है ना। कार्तिक का महीना जितना पवित्र है, मार्गशीर्ष का महीना भी उतनी पवित्र है। कार्तिक का महीना राधा रानी का है और मार्गशीर्ष का महीना कृष्ण का है। तो कृष्ण गीता में राधा रानी को गुप्त रखा है, छिपा के रखा है, क्योंकि प्रारंभिक अध्ययन है भगवद गीता, कृष्ण के विज्ञान का प्रारंभिक अध्ययन है, इसलिए इसमें राधा रानी का जो है नाम छिपाया है भगवान ने। इसलिए मार्गशीर्ष की चर्चा की, कार्तिक की चर्चा नहीं की कृष्ण ने। लेकिन अगर देखा जाए दोनों ही श्रेष्ठ हैं, है ना। तो 12 महीनों में कार्तिक और मार्गशीर्ष ये 2 महीने सर्वोत्तम है, है ना। और कार्तिक का महीना पहले आता है कृष्ण, और मार्गशीर्ष का महीना बाद में आता है, जैसे राधा रानी का नाम पहले आता है, कृष्ण का नाम बाद में आता है। तो राधा तो मार्गशीर्ष का महीना जो बहुत पवित्र है ना, और इस महीने में व्रत की कन्याओं ने कात्यायनी का व्रत किया था कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। ये जो महीना है इसमें हमें इस लीला का स्मरण करना चाहिए, कात्यायनी व्रत जो व्रत की कन्याओं ने किया था। जैसे कार्तिक के महीने में हम दामोदर लीला का रोज स्मरण करते हैं, उखल बंधन लीला का रोज स्मरण करते हैं, उसी प्रकार से ये जो महीना है इसमें हमें कात्यायनी व्रत का रोज स्मरण करना चाहिए कि बहुत पवित्र महीना और बहुत पवित्र लीला भगवान ने व्रत हम किए थे, है ना। तो बड़ी पवित्र लीला है। तो इस बार भी हम जो है गए थे चीर घाट में, ब्रजमंडल में चीर घाट स्थान है, वहाँ पर हम गए थे। तो वहाँ पर कुछ लीला हुई, तो वो जो है पढ़ के सुनाएंगे प्रिया प्रभु, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। नहीं, उसके पहले एक लीला प्रभुपाद के संबंध में हुई थी, जब वीरगंज प्रभु ने मुझे फोन करके बुलाया था, तो वो पहले सुनाएंगे कृष्ण प्रिया प्रभु, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे इस लीला को, ठीक है? माइक
माइक
तो ये घटना ऐसी कई घटना है फोन की, तो ये विशेष प्रेरणा है भगवान की तरफ से जो फोन आया है कंठ प्रभु का उस समय में, तो ये प्रेरणा है, प्रेरणा करके मतलब भगवान ने नीलकंठ प्रभु से फोन कराया घटना इस तरह की। प्रभु जी ने सायंकाल के समय छिट्टीवाड़ा मंदिर में प्रवचन दिया, ये हैडिंग है, प्रभु जी के पास नीलकंठ प्रभु का फोन आया। यह दिनांक 15 सितंबर 2014 की घटना है। इस दिन वैष्णव कैलेंडर के अनुसार श्रील प्रभुपाद भारत से समुद्री जहाज में बैठकर अमेरिका की भूमि में पहुंचे थे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत नामक ग्रंथ में इस घटना का विस्तार से वर्णन है तथा इस दिन श्रील प्रभुपाद ने श्री कृष्ण को अपने हृदय की बातें बताने के लिए जो बंगाली कविता लिखी थी वह भी इस ग्रंथ में प्राप्त होती है।
ये अब ये आप लोगों ने सुना कौन सी तारीख है, वो कौन सी तारीख बताई?
15 सितंबर।
हाँ, तो
अब आज प्रातः काल के समय यह निश्चित हुआ कि प्रभु जी इष्टा कैलाश वाले मंदिर में प्रातः काल का प्रवचन देंगे तथा एक श्रीमद् भागवत का एक श्लोक भी निश्चित किया गया जिस पर प्रभु जी प्रवचन देंगे। प्रभु जी तो चाहते थे कि पूरा प्रवचन श्रील प्रभुपाद की उस कविता पर दिया जाए जो कविता उन्होंने अमेरिका पहुंचकर श्री कृष्ण के लिए लिखी थी, परंतु यदि प्रभु जी श्रीमद् भागवत के श्लोक पर प्रवचन देंगे तो फिर किस प्रकार वे उस कविता पर पूरा प्रवचन देंगे? इस दुविधा के
कारण उस दिन सवेरे जो मेरा प्रवचन हुआ था तो मैं चाहता था, मैं क्या चाहता था उस दिन कि प्रभुपाद ने उस दिन कविता लिखी थी अमेरिका पहुंच करके, उस पर पूरा प्रवचन दूं, लेकिन मुझे आगे इस श्लोक पर करो फिर ये भी तो नहीं हो पाएगा।
इस दुविधा के कारण प्रभु जी ने प्रवचन के समय उस कविता का केवल हिंदी अनुवाद ही पढ़कर सुना दिया। अब यदि प्रभु जी सायंकालीन कक्षा में इस कविता पर पूरा प्रवचन देना चाहें तो वे नहीं दे सकते हैं क्योंकि सायंकालीन कक्षा किसी अन्य भक्त के द्वारा निश्चित हो चुकी थी। प्रभु जी की यह इच्छा एकमात्र श्री कृष्ण ही जानते थे तथा वे इस इच्छा को पूर्ण भी करना चाहते थे। अतः दिन के समय उन्होंने छिट्टीवाड़ा मंदिर के अधिकारी नीलकंठ प्रभु के हृदय में ऐसी प्रेरणा दी कि उन्होंने उसी समय प्रभु जी को आज सायंकालीन प्रवचन देने के लिए फोन किया।
शाम को जो है मैं चाहता था कि वहाँ मंदिर में प्रवचन दूँ प्रभुपाद की कविता पर, वो कोई दूसरे भक्त का नाम था, तो फिर नीलकंठ प्रभु को भगवान ने जो है प्रेरणा दी तो इन्होंने मुझे फोन किया।
ये विशेष अवसर भी था कि छिट्टीवाड़ा मंदिर में जो प्रभुपाद का निजी स्थान है उसमें ही मौका मिला। इस प्रकार प्रभु जी ने छिट्टीवाड़ा मंदिर में जाकर श्री प्रभुपाद की कविता पर पूरा प्रवचन दिया। प्रभु जी की इच्छा को श्री कृष्ण ने इस प्रकार पूरा किया। श्री कृष्ण के द्वारा हुए ऐसे आश्चर्य को देखकर प्रभु जी तथा उनके संगी जितने और बारंबार हंसते थे। अब मैं जो लीला सुनाने जा रहा हूँ आपको, चीर घाट में 13 नवंबर को प्रभु जी गए थे, तो बहुत ही सुंदर घटनाएं हैं जो कि मैं आपको सुनाना चाहूँगा। ध्यान से सुनिएगा। हेडिंग है प्रभु जी की चीर घाट की यात्रा और दूसरा हेडिंग है प्रभु जी के पीछे 4 बच्चे आकर बैठते।
यह प्रसंग है, ध्यान से सुनिए,
ध्यान से सुनिएगा नहीं तो फिर सबको समझ नहीं आएगी। यह घटना दिनांक 13 नवंबर 2014 की है। प्रभु जी का नियम है कि वे प्रत्येक वर्ष मार्च शीर्ष के महीने में वृद्ध मंडल के अंतर्गत चीर घाट नामक स्थान का दर्शन करने के लिए जाते हैं क्योंकि इसी स्थान में व्रज की कन्याओं ने श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मार्ग शीर्ष के पूरे महीने भर कात्यायनी व्रत किया था तथा इसी स्थान पर श्री कृष्ण ने उन कन्याओं की इच्छा पूरी करने के लिए उनके वस्त्रों का अपहरण किया था। चूंकि यह मार्ग शीर्ष का महीना चल रहा था अतः प्रभु जी उक्त दिनांक को चले चीर घाट का दर्शन करने के लिए गए। इस स्थान में पहुंचकर प्रभु जी गोपाल शंकु नामक ग्रंथ से श्री कृष्ण की उस लीला का वर्णन पढ़कर अपने संगे को सुनाने लगे जिसमें श्री कृष्ण ने इसी स्थान में ब्रज कन्याओं के वस्त्रों का अपहरण किया था। अब उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। प्रभु जी ने पढ़कर सुनाया कि जिस समय कन्याएं अपने वस्त्रों को यमुना के तट पर उतार कर जल में परस्पर क्रीड़ा कर रही थी उस समय श्री कृष्ण उनके वस्त्रों का अपहरण करने के लिए चुपके से उस स्थान पर आए। श्री कृष्ण के पीछे पीछे 4-5 वर्ष की अवस्था के 4 बालक भी उस समय उस स्थान पर आए।
समय सुन लो
श्री कृष्ण के पीछे पीछे। अब ज्यों ही प्रभु जी ने यह बात पढ़कर सुनाई कि श्री कृष्ण के पीछे पीछे 4 बालक भी उस स्थान पर आए ठीक उसी समय 4-5 वर्ष की ही अवस्था के 4 बालक उस स्थान में आकर प्रभु जी के पीछे बैठ गए। यह अत्यंत आश्चर्य की घटना है।
हरि बोल
हरि बोल।
क्योंकि जो 4-5 वर्ष के 4 बालक प्रभु जी के पीछे बैठ गए वे इस कथा को कुछ भी नहीं समझ रहे थे। यह तो श्री कृष्ण की ही लीला थी कि कथा के अनुसार इस घटना का मंचन हो गया। श्री कृष्ण के ऐसे आश्चर्य को देखकर प्रभु जी तथा उनके संगी अत्यंत विस्मित तथा बार-बार हो गए। अब दूसरी घटना यह पक्षियों ने शोरगुल करना आरंभ कर दिया। अब कथा और आगे बढ़ी। श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार कन्याएं श्री कृष्ण से अपने वस्त्र प्राप्त करने के लिए जल से बाहर निकली। उस समय वे अपने दोनों हाथों से अपने अंगों को ढके हुए थी। अब श्री कृष्ण का आदेश हुआ कि वे अपने मस्तक पर दोनों हाथ रखकर नमस्कार करें। यह उन कन्याओं के लिए अत्यंत लज्जा की बात थी कि वे उन बालकों के सामने ऐसा करने से पूर्णतया नग्न दिखलाई देगी। उस समय उन कन्याओं ने एक ऐसी युक्ति बनाई कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य उन्हें नग्न अवस्था में ना देखे। अतः उन कन्याओं ने उन 4 बालकों से कहा, अरे बालको देखो देखो उधर कुछ लोग शोरगुल कर रहे हैं। उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। जो ही प्रभु जी ने पढ़कर सुनाया कि उधर कुछ लोग शोरगुल कर रहे हैं ठीक उसी समय प्रभु जी के निकट वृक्ष में बैठे हुए अनेक पक्षी अत्यंत ऊंची आवाज में चैं 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 करने लगे। और उससे पहले वो साइलेंस थे पूरा और फिर उन्होंने खूब कॉम्पिटिशन किया करने लगे। यह एक अत्यंत अद्भुत घटना थी कि कथा में जो बात आई उसी के अनुसार उस घटना का मंचन हो गया। श्री कृष्ण के ऐसे आश्चर्य को देखकर प्रभु जी तथा उनके संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। अब तीसरी घटना। रास्ते में पैंगल से कात्यायनी व्रत की कथा निकली। अब एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई। प्रभु जी ने चीर घाट के स्थान में बैठकर गोपाल शंकु तथा धर्मवैवर पुराण इन दो ग्रंथों से चीर हरण की लीला पढ़कर सुनाई। उसके पश्चात वे अपनी गाड़ी में बैठकर जिस समय दिल्ली स्थित इष्टा कैलाश के मंदिर की ओर आ रहे थे उस समय उन्होंने 150 घंटे के प्रवचन वाले पेनड्राइव को चालू किया जो उस समय गाड़ी में ही लगा हुआ था। अब जिस समय गाड़ी को दिल्ली के मंदिर में पहुंचने के लिए केवल 1 घंटा ही रह गया था उस समय एक अत्यंत आश्चर्यजनक घटना हुई। पेनड्राइव में जो भी प्रवचन चल रहा था अचानक वह प्रवचन बदल कर एक अन्य प्रवचन चलने लगा। फिर वह प्रवचन भी बदलकर एक अन्य प्रवचन चलने लगा। इस प्रकार लगातार 4-5 बार प्रवचन बदलते गए तथा अंत में एक ऐसा प्रवचन निकला जिसमें प्रभु जी की आवाज में कात्यायनी व्रत की ही कथा का वर्णन था।
हरि बोल। आश्चर्य है ना
क्योंकि ये 150 घंटे का जो पेनड्राइव का प्रवचन था उसमें से अगर हम भी ढूंढते कात्यायनी व्रत की कथा तो बड़ा मुश्किल था पर ये भगवान की ऐसी व्यवस्था हुई कि अपने आप जो है 4-5 बार फाइलें बदली और एक ऐसी फाइल से आके रुका प्रवचन जो कि कात्यायनी व्रत का ही उसमें वर्णन था। इस प्रकार पूरे 1 घंटे तक वह प्रवचन गाड़ी में चलता रहा। इसके अतिरिक्त एक दूसरी बात यह भी थी कि इस प्रवचन में प्रभु जी की आवाज में इसी लीला का श्रीमद् भागवत तथा जगत संहिता इन दो ग्रंथों से पाठ हुआ था। ये दो ग्रंथ उन दो ग्रंथों से अलग हैं जिन दो ग्रंथों से प्रभु जी ने चीरघाट के स्थान पर उस लीला का पाठ किया था। इस प्रकार प्रभु जी तथा उनके संगियों को चार अलग अलग ग्रंथों से इस दिव्य लीला का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। अब यदि विचार किया जाए तो यह कितने आश्चर्य की बात है कि पेनड्राइव में इस लीला के पहले जितने भी प्रवचन थे वे सभी तब तक बदलते रहे जब तक इस लीला का प्रवचन नहीं आया, और जिस समय इस लीला का प्रवचन आया उस समय प्रवचन नहीं बदला बल्कि पूरे राष्ट्र भर उस लीला का वर्णन चलता रहा। श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य आश्चर्य को देखकर प्रभु जी तथा उनके संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। तो ये जो घटना है अब इसको भगवान ने एक बार तीन बार पुरुष किया है वो तो मैं बताना चाहूंगा तो ध्यान से सुनिएगा। ये 13 नवंबर को जो प्रभु जी गए थे तीन घटनाएं ऐसी हुई, और फिर मैं 16 नवंबर को संडे को एक प्रवक्ता थे जो क्लास जिनका निश्चित था, तो मैंने प्रभु जी को सुबह ही कहा कि प्रभु जी मैं ये घटनाएं सुनाना चाहता हूँ कि जिस पर जो है प्रश्न उत्तर का समय होगा तो मैं तीनों घटना पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। तो प्रभु जी ने कहा उस वक्त तो जो है प्रश्नोत्तर का समय होगा और इतना सीमित समय होगा कि तुमको जो है ये बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। पर फिर भी मैंने प्रभु जी को कहा, तो प्रभु जी ने कहा श्री कृष्ण की ही लीला है, अगर वो चाहेंगे तो अवसर मिल जाएगा सुनाने का। तो एक अत्यंत आश्चर्य की बात हुई कि उस दिन जो है प्रवचन हुआ इस श्लोक के ऊपर, और फिर जो है प्रभु जी को मौका मिला कि प्रभु जी कुछ बताएं उस श्लोक के ऊपर। तो उस वक्त प्रभु जी ने इस श्लोक की ही चर्चा की, और फिर प्रभु जी ने पूछा कि किसी और का प्रश्न है या समीक्षा है, जो कि हमेशा होती है। तो उस दिन किसी ने हाथ ही नहीं उठाया संडे वाले दिन, तो फिर मुझे मौका मिला बोलने का। तो एक बहुत ही अत्यंत आश्चर्यजनक घटना घटी वो सुनिए। जब मैं इसी पुस्तक से पढ़ के सुना रहा था तो जब मैं यहाँ पे पहुंचा कि चिड़ियाओं ने पक्षियों ने शोरगुल करना प्रारंभ किया, तो ठीक उसी वक्त जो है जहाँ पे हमारे मंदिर में व्यास आसन है उसके पीछे के गेट से चिड़ियाओं की पक्षियों की इतनी आवाज आने लगी, तो सबों के बीच में ही घटना घटी ऐसी।
अरे वो
ये मतलब बहुत विशेष प्रेरणा से जो है पक्षी भगवान की प्रेरणा से उस पर उन्होंने हल्ला किया शोरगुल किया ताकि सब लोग ये समझें कि ये कितनी मतलब भगवान की इसमें कृपा है किस प्रकार की लीला। फिर उसके बाद मैंने अकाउंट में सुनाया किसी भक्त को, उन्होंने कहा कि भाई हमको भी सुनाओ। तो अंधिका प्रभु से वो उस वक्त बोले कि देखो चिड़िया आदि भी शोरगुल कर रही है खिड़की के पीछे। और आज तो एक बहुत ही विशेष घटना घटी कि कमरे में जब मैं इसको सुना रहा था तो जब मैं इस वक्त यहाँ पे ही पहुंचा था कि शोरगुल की कथा में, तो लैपटॉप जो है अपने आप लैपटॉप चल रहा था उसमें फाइल में नाम दे रहा था, तो उस वक्त मैंने उस काम को वहीं छोड़ दिया और मैं इस घटना को सुनाने लगा। तो लैपटॉप में अपने आप ही प्रभु जी का प्रवचन चालू हो गया। ये बहुत ही मतलब विशेष बात कितनी, अब इसमें देख सकते कि भगवान का कितना हाथ है, क्योंकि उस वक्त जो है गाड़ी है फाइलें अपने आप बदल गई सर। और आज इसी तरह का आश्चर्य हुआ कि लैपटॉप में जो है अपने आप प्रभु जी का प्रवचन चलने लगा। जब शोरगुल की बात है वो शोरगुल नहीं था, कहने का मतलब ये था कि आवाज आना चालू हुई। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, सैकड़ों घटनाएं हैं, अभी इसी साल में हो गई है ऐसी घटना, तो आप इसका आनंद ले सकते।
हरे कृष्णा। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा, या मैं प्रश्न रखता हूँ। गीता जयंती तो ये जो है महीना दिसंबर का जो महीना है तो ये गीता जयंती का महीना है। प्रभुपाद ने जिस समय ये आंदोलन चलाया था विदेशों में तो जो भक्त लोग थे वो किताबों को जो है वितरण करने में बिल्कुल उनका अभ्यास नहीं था, उनको कोई अनुभव नहीं था, और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो किताबें मतलब सड़कों में या कहीं पर भी बेच सकते हैं, पुस्तकें दे सकते हैं। उनका जो अभ्यास था मेरा पानी देना पानी के लिए, उनका जो अभ्यास था वो बैक टू बोर्ड है पत्रिका बेचने का था। तो सड़कों में बैठ बैठ पत्रिका बेचते थे, तो तो पत्रिका की कीमत बहुत कम होती थी तो आसानी से बेच जाती थी, लेकिन इतनी मोटी किताबें हैं, सुनने सब लोग, इतनी मोटी किताबें हैं बेचने का उनको कोई अनुभव नहीं था, तो उनको तो बड़ा असंभव जैसे लग रहा था कि अगर कैसे ये किताबें बेचेंगी, लेकिन तो हो पा रहे हैं, छपवा ली किताबें, छपवा ली और भरा, पूरी भरी हैं, गोदाम में भरी हैं, और प्रभु पास कहते हैं कि तुम लोग मेरी किताबें नहीं बेचते हो, तुम लोग मेरी किताबें नहीं वितरण करते हो, लेकिन प्रभु पास की ओर से भी उन्हें कुछ मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था कि मतलब कैसे बेचें क्या करें, तो वे लोग जो है हमेशा चिंता में रहते थे कि कैसे बिकेंगे कैसे बिकेंगी किताबें। तो एक बार कुछ भक्त लोग गए तो अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए गए पेट्रोल पंप में, तो पेट्रोल पंप में जो बिल बना पेट्रोल का, तो किसी भक्त ने मतलब कृष्ण प्रसाद सोचा चलो प्रयोग करते हैं, तो वो जिसको पैसा देना था उससे कहा कि भाई देखो हम पैसे दे आपको एक कृष्ण पुस्तक देते हैं, आप ये ले लो पैसे की जगह। तो उसने अपने मालिक को बताया कि भाई ये ऐसा मतलब सुझाव कर रहे हैं, तो मालिक ने जो है देखी किताब बहुत बढ़िया ऊपर से और अंदर से खोल करके उसने जब देखा तो बहुत अच्छी लगी किताब, तो उसने ले ली। तो जब पहली बार किताब देखी तो भक्तों को बड़ा आश्चर्य हुआ,
नहीं इतना गर्म नहीं है आप ही बता,
तो भक्तों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो पहली बार जो है ये प्रयोग सफल हुआ था भक्तों का पेट्रोल पंप में।
ठीक
तो पेट्रोल पंप में जो है पहली कृष्ण पुस्तक जो है बिकी थी। इसके बाद फिर वो सोचते थे चलो फिर अब पेट्रोल पंप में ही जो है प्रयोग करें, तो दूसरे दूसरे पेट्रोल पंप में जाते थे, तो आज इस पेट्रोल पेट्रोल भराया तो अगले दिन दूसरे पेट्रोल पेट्रोल भराया तो वहां भी बिकी किताब, लेकिन अब कितने पेट्रोल पंप में जाएंगे पेट्रोल पंप तो सीमित ही हैं। पेट्रोल पंप तो सीमित थे, तो फिर उनको जो है एक विचार सुझा, 25 दिसंबर वहाँ विदेशों में बहुत बड़ा त्यौहार होता है क्रिसमस का दिन होता है, तो क्रिसमस के दिन जो है लोग बहुत खरीदारी करते हैं, और कोई भी नई चीज़ दिखाई दे तो जो है खरीदते हैं, तो बहुत बिक्री होती है, तो उन लोगों ने जो है मतलब विचार किया कि भाई एक दिन का ये मैराथन करेंगे, तो उसका नाम दिया क्रिसमस मैराथन 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर एक दिन के लिए जो है वो कई दिन से तैयारी करने लगे, कई दिन पहले से कि भाई कैसे मतलब अधिक से अधिक किताबें हम लेके जाएं और सड़कों में जाएं बेचें। तो जब उन्होंने प्रयोग किया तो बहुत सफल हुआ, तो बहुत किताबें बिकी और बहुत रात तक किताबें बेचते रहे भक्तों। तो हर साल जो है अब वो ये सोचते थे भाई ये क्रिसमस मैराथन में जो है हमें किताबें बांटनी किताबें बेचनी। तो पहले दिन पहले साल जो है उन्होंने एक दिन का मैराथन किया था, फिर दूसरे साल उन्होंने विचार किया तीन दिन का मैराथन करेंगे, तो उन्होंने तीन दिन पहले से मतलब 22, 23, 24, 25 तीन दिन के लिए उन्होंने जो है मैराथन किया, तो बहुत सफलता मिली। तो अगले साल से उन्होंने 7 दिन का मैराथन किया, तो मतलब 25 दिसंबर के एक सप्ताह पहले से उन्होंने ये सब बेचना शुरू कर दिया, तो काफ़ी सफलता मिली। तो इस तरह से उन्होंने जो है मतलब पहले एक दिन का मैराथन किया दिसंबर में 25 दिसंबर को, फिर 3 दिन का मैराथन किया 23, 24, 25, फिर 7 दिन का मैराथन किया है ना, फिर अगले साल उन्होंने पूरा दिसंबर को ही मैराथन मान लिया। फिर उनका जो है मतलब उत्साह इतना बढ़ गया और उनके हाथ भी खुल गए और उनके अंदर विश्वास भी पैदा हो गया कि ये पुस्तकें जो है मतलब लोग खरीदते हैं, उनको विश्वास हो गया इस बात से। तो फिर भक्त लोग जो है मतलब सड़कों में जाने लगे और जहाँ देखो वहीं पर भक्त लोग दिखाई दे रहे थे किताबें देखते हुए।
तो ये जो पुस्तकें हैं तो इनकी बहुत बड़ी मांग है, क्योंकि तो ये पुस्तकें जो प्रभुपाद ने लिखी हैं ये भगवान कृष्ण ही उनसे लिखवाई हैं, और इतनी सरल भाषा में कृष्ण भावनामृत का संदेश दिया है प्रभुपाद ने कि इसको पढ़ करके लोग तुरंत समझ जाते हैं। जो कठिन से कठिन विषय है उसको प्रभुपाद ने इतना सरल करके जो है समझा दिया है, कृष्ण की ऐसी साहसिक शक्ति उनको प्राप्त हुई कि उन्होंने बहुत सरल तरीके से अपनी पुस्तकों में वो सब बातें जो शास्त्रों की बड़ी कठिन कठिन बातें हैं वो समझा दी हैं और कृष्ण भावनामृत को एकदम सरल बना दिया। तो ये प्रभुपाद की पुस्तकें इतनी इनकी मांग है, आप ये सोचिए कि इनके द्वारा ही आता है कि संसार की रक्षा हो सकेगी, नहीं तो अज्ञान ही अज्ञान है। तो आज का जो समाज है वो बहुत प्रगत हो चुका है और बहुत तेजी से नरक की ओर जा रहा है। आज का जो मानव समाज है बहुत तेजी से नरक की ओर जा रहा है। तो ये प्रभुपाद की पुस्तकें ही हैं जो कि लोगों को बताने वाले हैं, और विशेष से भगवद गीता था, क्योंकि भगवद गीता के जो और संस्करण हैं जैसे गीता प्रेस गोरखपुर में मिलती है गीता, तो उसकी वो परंपरा नहीं है। जो प्रामाणिक परंपरा होनी चाहिए गीता की, क्योंकि भगवान ने गीता में परंपरा की बात कर की है कि परंपरा के द्वारा ही ये ज्ञान राजाओं को प्राप्त हुआ है ना। तो अब चाहे गीता प्रेस गोरखपुर की गीता हो या कहीं की भी गीता हो, अगर आप पूछें कि भाई कौन सी परंपरा है जिस लेखक ने गीता की टीका लिखी है, गीता की व्याख्या लिखी है, उसकी क्या परंपरा है, तो कोई परंपरा ही नहीं है। जैसे गांधी जी ने गीता की टीका लिखी तो कोई परंपरा ही नहीं है। तो जब परंपरा नहीं होती है तो कोई बड़ा से बड़ा विद्वान हो वो गीता के संदेश को नहीं समझ सकता है ना, और कुछ सही और कुछ गलत बातें सब मिला जुला करके वो कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। कोई व्यक्ति ग्रह भक्त नहीं बन सकता, कोई व्यक्ति कृष्ण की शरण नहीं ले सकता। लेकिन प्रभुपाद ने भगवद गीता की टीका लिखने के पहले परंपरा दी है, और कैसे परंपरा दी कि भगवान कृष्ण ने इसका उपदेश ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास ने मध्वाचार्य को दिया, इस प्रकार से 32वें आचार्य हैं प्रभुपाद है ना। तो कृष्ण से चल करके 32वें आचार्य प्रभुपाद है। तो इस प्रकार की परंपरा में प्रभुपाद ने ये गीता का जो है उपदेश निकाला, इसलिए इसको नाम दे दिया भगवद गीता का रूप। तो ऐसा रूप नाम क्यों दिया, क्योंकि वो जितनी टीकाएं हैं गीता की तो ज्यादा ज्यादा ऐसे ही हैं, वो ऐसा रूप है ही नहीं, ऐसा रूप हो भी नहीं सकती, क्योंकि अगर परंपरा के द्वारा अगर नहीं सुना इस ज्ञान को तो कोई व्यक्ति जो है गीता के संदेश को समझ नहीं सकता है। इसलिए इसको नाम दिया रूपा ने भगवद गीता का रूप। अब ये भगवद गीता का रूप ऐसा भी मत सोचिए कि भाई हम तो उनको देंगे जो इसको पढ़े। आप लोगों के ये विचार रहते हैं ना अंदर कि भाई ये किताब तो हम उन्हीं को दिया देंगे जो लोग पढ़े, नहीं तो ऐसे रख दें तो क्या फायदा देंगे। इन ऐसा नहीं फायदा है, आप जो है कोई पढ़ना चाहता है कोई नहीं पढ़ना चाहता है आप दीजिए, क्योंकि या तो इसी प्रकार से चलता है। विदेशों में भी कौन पढ़ना चाहता है, लोग जानते भी नहीं है। जैसे मरीज अपनी दवाई का निर्णय खुद नहीं कर सकते कि उसे कौन सी दवाई चाहिए, वो तो नहीं जानता, लेकिन जो डॉक्टर है तो वो जो है बलपूर्वक उसको दवाई देता है, उसको नहीं लेना है, उसको नहीं खाना है, वो दवाई नहीं पीनी है, उसको पड़ भी रखती है, लेकिन डॉक्टर क्या करता है बलपूर्वक देता है कि तुझे ये दवाई लेनी पड़ेगी है ना। और जब दवाई लेता है तो मरीज को चाहे बुरा लगे लेकिन बाद में जब उसका रोग ठीक होता है तब मानता है कि हाँ मेरा भला हुआ। इसी प्रकार से आप भगवद गीता की पुस्तक किसी को देते हैं और वो नहीं लेना चाहता है तो ऐसा नहीं है कि आप उसको ना दें, आप जितना अधिक हो सके आप उसको जो है मतलब फोर्स करिए, उसको चाहे मना करके चाहे जान करके अगर आप उसको देते हैं तो अंत में उसका भला ही होगा, ठीक है ना। और इसमें आपको कोई दोष भी नहीं लगा कि नहीं भाई वो नहीं लेना चाह रहा था तो तुमने क्यों दे दिया, इसमें आपको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि गीता का ज्ञान देने में उपदेश देने में तो दोष लगता है, वे नहीं देना चाहिए उपदेश, भगवान ने मना किया है वेदम देना तपस्काय ना धपका है के बाद में माम के दोष दे दिए है। तो भगवान ने कहा कि भक्तों को ही उपदेश देना है, जहाँ तक पुस्तक देने की बात है पुस्तक आप किसी को भी दे सकते हैं।
क्योंकि पुस्तक में ये सुरक्षा है कि वो अगर उसको नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ेगा, किताब उसने ले ली और किताब उसने रख दी है ना, तो ये किताब जो है अपना काम करेगी कि जो है वो 10 साल के बाद पढ़ेगा या 20 साल के बाद पढ़ेगा या उसके घर में कोई और पढ़ेगा या कोई उसके घर में कोई गेस्ट आएगा वो पढ़ेगा। तो आप तो नहीं जानते कि किस व्यक्ति के हाथ में पुस्तक जाएगी, आपने जिसके हाथ में दी है उसके हाथ में फिर किसके हाथ में जाएगी आप तो नहीं जानते है ना। तो उस व्यक्ति की भी रक्षा होगी, ये पुस्तक जो उसकी भी रक्षा करेगी, जिस व्यक्ति को आपने दी है जो नहीं लेना चाहता था उसकी भी रक्षा करेगी है ना। और जो व्यक्ति आज नहीं पढ़ रहा है, आप सोचते हैं भाई वो तो पढ़ नहीं रहा है तो रख ली है तो मैंने उसको बेकार दी, तो ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, क्योंकि वो 10 साल के बाद 20 साल के बाद वो पढ़ेगा, आपको क्या पता कि वो कब पढ़ेगा। तो प्रयास यही करना है कि घर घर में ये पुस्तक पहुंचे, आप किसी प्रकार से भी घर घर में ये पुस्तक पहुंचाइए, और अगर आपने पहुंचा दी तो आपने अपना काम पूरा कर दिया है, क्योंकि इस पुस्तक में प्रभुपाद है और प्रभुपाद की वाणी है और प्रभुपाद की वाणी का जो संग है वो उनके शारीरिक संघ से ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जब जीवित थे तो शारीरिक संघ भक्तों को मिलता था प्रभुपाद का, लेकिन वाणी के रूप में प्रभुपाद अभी भी जीवित हैं, तो प्रभुपाद की वाणी का संघ आप किसी को भी दे सकते हैं, ये भगवदगीता, और उसको आप भगवदगीता पहुंचा देते हैं तो प्रभुपाद खुद ही उसको सिखाएंगे, प्रभुपाद खुद ही उससे बात करेंगे, प्रभुपाद खुद ही उसको बोलेंगे। तो आप जो है अपनी ओर से बहुत बड़ा काम करते हैं अगर आप गीता की पुस्तक पहुंचा देते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी को वैसे उपदेश देते हैं 3 मिनट के लिए 4 मिनट के लिए मान लो कुछ उपदेश देते हैं है ना, तो उससे उतना काम नहीं पड़ेगा जितना पुस्तक देने का। तो अगर आप जो है किसी भी प्रकार की तरकीब से उनके पास पुस्तक पहुँचा देते हैं, चाहे नए साल के गिफ्ट के रूप में पुस्तक पहुँचा देते हैं या शादी में मतलब कोई गिफ्ट है ना, मिठाई का पैकेट है उसकी जगह पर आप ये गीता देते हैं, तो किसी प्रकार से भी अगर आप किसी के घर में ये पुस्तक पहुंचा देते हैं तो आपने समझिए कि प्रभुपाद को ही पहुंचा दिया है। सोचिए प्रभुपाद अकेले जब थे तो उन्होंने कितना बड़ा काम किया, पूरी दुनिया में कितना आंदोलन चला दिया, उन्हीं प्रभुपाद को आप क्या दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, जिसको भी दे रहे हैं आप प्रभुपाद दे रहे हैं, वही प्रभुपाद उन्हीं प्रभुपाद को आप दे रहे हैं पहुंचा रहे हैं किसी घर में, तो सोचिए कितना बड़ा काम किया कि हमने प्रभुपाद को पहुंचा दिया है ना। तो ये जो है मतलब बहुत बड़ा ये अवसर है आप लोगों के लिए कि आप अगर कुछ पढ़ा है आपने, कुछ नहीं पढ़ा, कुछ समझा कुछ नहीं समझा, लेकिन अगर आपने ये आपने दे दिया, गीता दे दिया, तो आपने सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया, इससे बड़ा उपहार कोई नहीं हो सकता। अभी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, सोचिए नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने जापान में जा करके किसी बहुत बड़े अधिकारी को ये गीता भेंट में दी और उसने उन्होंने ये भी कहा कि इससे बढ़कर के मेरे पास और कोई वस्तु नहीं है, उन्होंने बोला है ना। तो ये मतलब बहुत अच्छा एक ये अनुकूल बिंदु है हमारे आंदोलन के लिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने गीता भी दी, तो कौन सी गीता दी, ये गीता दी, ये गीता दी, प्रभुपाद की गीता दी, और उन्होंने ये खुद अपने मुंह से कहा कि इससे बढ़कर के मेरे पास और कोई वस्तु नहीं है, इससे बड़ी वस्तु दोस्तों नहीं है। तो हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छे मतलब एक प्रचार के लिए एक बहुत अनुकूल वातावरण हमारे लिए बन गया है। तो आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप इस गीता को जो है घर घर पहुंचाएं, वैसे प्रभुपाद की और भी पुस्तकें हैं, छोटी पुस्तकें भी दे सकते हैं, बड़ी पुस्तकें भी दे सकते हैं, लेकिन चूंकि गीता के नाम पर लोग ज्यादा भ्रमित हैं और गीता पढ़कर के लोग भक्त नहीं बन रहे हैं, क्योंकि गीता का सही संदेश मिल नहीं रहा है लोगों को, तो वैसे दूसरी पुस्तकों में भी वही संदेश है जो गीता में है, प्रभुपाद की कोई पुस्तक दे सकते हैं, चूंकि गीता के नाम पर लोग जो है मतलब क्या है कृष्ण के भक्त नहीं बन पाते हैं, क्योंकि वो जो है गैर प्रामाणिक टीकाकार ने व्याख्या की है, वो जो है मतलब ज्यादा ज्यादा घरों में है, लोग कहते हैं हमारे घर में है गीता, आप पूछे कि भगवद गीता था रूप है, तो बोले नहीं ये तो नहीं है, गीता है हमारे पास, ये हमारे पास भगवद गीता का रूप नहीं है। तो आप पूछिए, अगर कोई कहता है कि नहीं हमारे घर में गीता है, हमको गीता की जरूरत नहीं है, तो आप उनको दिखाइए कि आपके पास कौन सी गीता है, ये भगवद गीता का रूप है, इसको पढ़ने में आपको जो मिलेगा वो आपको उस गीता में नहीं मिलेगा, उस गीता से आप भक्त नहीं बन सकते, भगवान को नहीं समझ सकते, भगवान की शरण नहीं ले सकते। और इस गीता का जो है विश्व की कितनी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, 80 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है ना। और सर्वाधिक ये जो है बिक्री हो रही, इस पुस्तक की जो है सबसे ज्यादा बिक्री हो रही है। और अमेरिका के भी जो है इसमें लिखा है, अमेरिका के भी बहुत से जो कॉलेज हैं उनमें ये पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक के रूप में इसको स्वीकार किया गया है, तो ये सब इसमें लिखा हुआ है। तो आप लोगों को जो है हमारा ये संदेश है कि आप लोग प्रसन्न हो जाए, प्रसन्न नहीं प्रसन्न